الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ النساء کی ہم نے 83 تک پڑھ لیا تھا آج ہم 84 یعنی 84 نمبر آیت سے شروع کریں گے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پیچھے ایک جہاد کا حکم تھا آیت 75 میں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم کیوں نہیں نکلتے جبکہ کمزور لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارا کوئی سازگار بنا دے اور پھر منافقین کی بات زیر بحث آ گئی تھی کہ یہ تو نہیں نکلیں گے موت سے ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں اور پھر ان کی ایک اور پہلو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں کریں گے گھر جا کر پھر اور طرح کی باتیں کریں گے اور ان کا خیال ہے کہ کچھ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں وہ بڑے ٹھیک رہتے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں نعوذ باللہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں یہ پوری ان کی بات زیر بحث آ گئی تو اب ظاہر ہے کہ جہاد کا حکم ہے اور کچھ لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں اور کچھ لوگ جانے کو تیار ہیں تو اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے کہا کہ فقاتل فی سبیل اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلیں جہاد کریں آپ لا تکلف الا نفسک آپ کے علاوہ آپ کے اوپر کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے کسی یعنی کوئی اور مکلف ہے یا نہیں ہے آپ اپنے طور پر مکلف ہیں آپ نکلیے بس یہ اب دو طرح کی باتیں یہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے ایک یہ کہ کیا جہاد کا حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا معاملہ کچھ اور ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ابھارنے کے لیے بھی ہم اس طرح کی بات بھائی ان کو چھوڑیے آپ کرے کر اپنا کام ٹھیک ہے اس طرح کا اسلوب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی اسلوب ہو سکتا ہے کہ واقعتاً صرف آپ کے لیے یہ حکم تھا تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ مومنین کو بھی حکم دیا گیا تھا ان کو اگر وہ نہیں نکلے تو جیسے غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کو پھر سخت قسم کی توبہ کا بھی پروسیس گزارا گیا پروسیس میں سے گزارا گیا وہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر واضح کرتا ہے کہ نہیں جہاد کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا صحابہ کو بھی تھا اور تو اب پھر یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر طنزن کہا جا رہا ہے کہ جو منافقین تھے ان کے اوپر طنز کرتے ہوئے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ نکلیں انہوں نے تو نہیں آنا یہ تو ڈیلے پڑ گئے ہیں یا بزدل ہو گئے ہیں یا کمزور پڑ گئے ہیں آپ نکلیں اور آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ہے یہ نہیں آتے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے آپ سے میں نہیں پوچھوں گا مجھے پتہ یہ کیوں نہیں آ رہے تو ایک معنی یہ ہے تو فقاتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے قتال کیجئے لا تکلف الا نفسک اور آپ کے سوا آپ کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے یعنی یہ جائیں نہ جائیں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا آپ نہیں جائیں گے آپ کو پوچھا جائے گا یہ مطلب ہے ایک اور ہلکا سا شیڈ اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلیں تو آپ ان کو زبردستی تو نہیں لے جا سکتے تو اس لیے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب کو ہانکیں اکٹھا کریں زبردستی کریں لے کر جائیں جس نے جانا ہے سو اللہ کی مرضی سے چلا جائے گا تو ہلکا سا شیڈ یہ بھی ہے تو گویا 3 باتیں ہو گئیں ایک یہ کہ آپ کی اپنی تو ذمہ داری ہوتی ہے ہر آدمی کی مثلا مجھے کہا کہ نماز پڑھو تو میں نے پڑھنی ہے میرے بچے پڑھ رہے ہیں میرے دوست پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے میں تو کم از کم پڑھوں ایک تو پہلو یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نہیں اگر جاتے تو میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنے اگر یہ لوگ نہیں جاتے تو میرے اوپر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اگر جہاد پہ نہیں نکلتے تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ان کے کھاتے میں پڑے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو زبردستی تو نہیں لے جا سکتے زبردستی نہیں لے جا سکتے تو ٹھیک ہے آپ نے اعلان کر دیا لوگ جہاد نکل آئیں گے نہیں نکلیں گے تو کیا مطلب پکڑے جائیں گے تو لا تکلف الا نفسک وحرز المومنین عسی اللہ ان یکف بأس الذین کفروا तो आप मोमिनीन को उभारिए, हो सकता है कि अल्लाह ताला काफिरों की ताकत को, काफिरों की जंगी जो अजाइम है उनको रोक दें। तब फरमाया कि आप जिहाद करें और आपके ऊपर किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, आप ही की है बस, अलबत्ता मोमिनीन को आप उभारिए, वह हर्रिस अल मोमिनीन, मोमिनीन को उभारिए कि वो भी जंग के लिए निकलें। ये बात मजीद इस बात में मोहकम कर देती है कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के जिम्मेदार थे और मोमिनीन को बस उभारना है उन्होंने। ठीक है, ये भी तंज का जुमला है कि जो मोमिन होंगे वो आपकी बात मान लेंगे, जो नहीं होंगे वो उससे नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसमें भी यानी जिम्मेदारी आप पे डाली जा रही है लेकिन सुनाया उनको जा रहा है, तो तीनों बातें उनको सुनाई जा रही हैं। आप निकलिए, इनको छोड़िए, दफा कीजिए, ये मुनाफिकीन आपकी बात नहीं मानेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। अलबत्ता जो मोमिनीन हैं उनको आप इस पर आमादा कीजिए, उभारिए, वो आपके साथ निकलेंगे। तो ये तीन टुकड़ों में तीन अहम बातें कर दी गई हैं। आगे फरमाया कि असल्लाहु अन यकुफ्फ बास अल्लज़ीना कफरू, तो तवक्को है कि अल्लाह ताला काफिरों की बास को रोक देंगे। बास जो है ये जंग की शिद्दत को कहते हैं। अब जो ये फकातिल की जो आयत थी, इसका पीछे से अब ताल्लुक मैंने जैसे जोड़ा कि पीछे जहाज चल रहा था तो जिहाद का हुक्म हुआ, फिर मुनाफिकीन की कमज़ोरी सामने बताई गई कि वो नहीं निकलेंगे, मौत से डरते हैं। तो अब ये हुक्म क्या उस जिहाद के लिए है कि अब आप मक्का में मौजूद कमज़ोरों के लिए निकलें, या ये जामे हुक्म है? लफ्ज़ बास जो है वो इसको वाज़े करता है कि काफिरों की जंगी जो शिद्दत है उसको कम करने के लिए, वरना यहाँ फितना आना, अगर वो होता तो फितना आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि दोनों तरह की बातें इसमें शामिल हैं, जो प्रोसिक्यूशन हो रही थी मक्का में मुसलमानों की वो भी इसमें शामिल है, और जो वो जुनून कोतारी था कि मदीना को साफ़ कर दिया जाए, नौज़बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, सबको मार डाला जाए ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए, तो उस तरफ भी ये जा रही है। तो गोया पूरा जो उस वक्त का माहौल है, जो क्रैश का जो जज्बा है नेगेटिव किस्म का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, वो और जो प्रोसिक्यूशन मक्का में कर रहे थे, उन दोनों के ख़िलाफ़ ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि तुम लोगों के निकलने की वजह से अल्लाह ताला इनकी ताकत को, इनकी शिद्दत को रोक दे। ये आयत इस मानी में बहुत वाज़ है कि अल्लाह ताला की जो स्कीम होती है उसमें इंसानों का एक किरदार होता है, और वो किरदार अगर लोग अपनी जिम्मेदारियां अदा ना करें तो वो किरदार अदा नहीं होता। तो मिसाल के तौर पर चोरी चकारी, कत्ल, जना, इनके लिए मुआशरे के ऊपर जिम्मेदारी डाली है अल्लाह ताला ने, तो अगर मुआशरा ये जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा तो ये लोग दंदनाते फिरेंगे, कोई इनको रोकने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला रोकते चीज़ों को उस वक्त हैं जब हम कुछ इकदाम करते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी हमें अदा करेंगे तब अल्लाह ताला की तरफ से अनायत आएगी, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए इम्तिहान के लिए जगह बनाई है। तो इसमें वो चीज़ नहीं रखी कि हम चाहें ना चाहें, हम काम करें ना करें, अल्लाह ताला ने कर देना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये असल्लाहु अन यकुफ्फ बास अल्लज़ीना काफरू जुमला ये बता रहा है कि मोमिन निकलेंगे, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे, तो तब अल्लाह ताला काफरों का उस शिद्दत को रोक देंगे, उस हरकत को रोक देंगे, वो जब जंग का उनके ऊपर जुनून सवार है। तो ये ज़ाहिर है कि सारी दुनिया ऐसी चल रही है, वो मुआशरा अच्छा होगा जहाँ मुजरमों को सज़ा दी जाती है वहाँ जुराम कम हो जाएंगे, जिस मुआशरे में जराइम की सज़ा नहीं दी जा रही वहाँ जराइम ज़्यादा हो जाएंगे, या रिश्वत चलती है या इस तरह का काम, तो वहाँ पे जराइम ज़्यादा हो जाएंगे। ये फितरी सा एक सिस्टम है जिसको यहाँ भी अल्लाह ताला सहाबा की ज़िंदगी में उसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि आप जंग कीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप निकलें, बाकी की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, अलबत्ता इतना है कि आप मोमिनीन को उभारेंगे। अब जाहिर है कि जो जंग है इसको अल्लाह ताला ने दूसरी जगह यूं ही बयान किया है जिहाद के बारे में कि अगर अल्लाह ताला एक कौम को दूसरी कौम से ना धकेलता रहता तो गिरजे ढा दिए जाते, मस्जिदें ढा दी जाती जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। تو ایک قوم کے مقابلے میں دوسری قوم اللہ تعالیٰ اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ بیلنس قائم رہے. نقصان تو اس میں بھی ہوتا ہے, مسجدیں اس میں بھی گرتی ہیں, لیکن پھر بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے پھر یہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو ابھارتے رہتے ہیں اور یہ بیلنس ہلکا پھلکا قائم رہتا ہے. نقصانات بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن عمومی طور پر ایک امن قائم رہتا ہے. سوائے اس کے کہ جب ہم سورہ بنی اسرائیل پہنچیں گے تو وہاں ایک دوسرا پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کام پہ آتے ہیں تو اپنی کسی قوم کو جو اس نے چنی ہوتی ہے تو ان پر سخت قسم کا عذاب بھی آ جاتا ہے, ان کی مسجدیں ساری ڈھا دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اب صورت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جو منافقین کی کمزوری تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں اور کسی کے نہیں ہیں, تو آپ نکلیے تو مومنین کو بھی ابھاریے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو روک دے. اسی اصول پر مولانا فراہی نے یہ بات کہی کہ خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں آئیں گے, کیونکہ کئی دفعہ اس کو گرایا گیا ہے, کئی دفعہ اس کو شہید کیا گیا, کئی دفعہ خود بارشوں اور اس طرح کی چیزوں سے بھی اس کا بلڈنگ خراب ہوئی, تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آتے اس وقت, واقع فیل میں کیوں آئے؟ تو وہ اس طرح اس اصول سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ قریش نے کچھ کیا ہے, انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق کام کر دیا ہے تب اللہ تعالیٰ آئے, ورنہ نہیں آنا تھا. تو صحابہ نکلیں گے, مکہ پہ حملہ کریں گے, تبھی معاملہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہونا ہے. تو یہاں وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ واقع فیل میں بھی لازمن قریش نے کوئی کام کیا ہے دفاع کا, جو ان کی ہمت تھی وہ انہوں نے ساری لگا دی ہے, تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے. تو آگے فرمایا کہ واللہ اشد بأساً و اشد تنکیلا, اگر جنگ ہی کی شدت کرنی ہے, پکڑ ہی کی شدت کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر بأس والا ہے, و اشد تنکیلا, اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر سزا دینے والا ہے. اب یہ دو پہلو ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. پیچھے صرف اتنی بات ہی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بأس کو روک دیں, بأس کے لفظ پر توجہ دیجیے. آگے فرمایا کہ واللہ اشد بأساً, اس جنگی معاملے میں, جنگ کرنے میں, جنگ کی سختی کرنے میں اللہ ان سے زیادہ سخت ہے کہ جنگ کی کیفیت پیدا کر دیں. اس نے فرشتے بھیج دینے, صحابہ کے اندر ایمان کا جذبہ موجود ہے, بس حملہ کر دیا, ہر وقت حملے ہو سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ. اللہ نے حکم دینا ہے, صحابہ نے نکل پڑنا ہے, حکم دینا ہے, صحابہ نے نکل پڑنا ہے, فرشتے ان کی جلاؤ میں ہیں اور بس معاملہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے, اور خود اللہ کی ذات اگر کسی گردن کو روڑنا چاہے تو کوئی مشکل ہی نہیں. اشد بأساً, تو پہلا ان کی جو جنگی جنون تھا اس کا جواب دیا کہ اگر اس جنون پہ آؤ گے تو پھر خدا کی طرف سے پکڑ سخت ہو جائے گی, اور دوسرا فرمایا وہ اشد تنکیلا, کہ میں سزا دینے میں بھی ان سے بڑھ کر ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا سزا دینا چاہتے تھے؟ وہ انتقام لینا چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین برباد کر دیا, بت پرستی, ہمارے خداؤں کو برا کہہ دیا, خداؤں کا انکار کر دیا کم از کم, تو یہ جو اس کی وہ سزا دینا چاہتے تھے مسلمانوں کو. تو اللہ نے کہا کہ میں, تو گویا قریش کے دو جذبے تھے ان جنگوں کے اندر, ایک یہ کہ ان کے اوپر ایک جنگ کا خوف تاریکی رکھنا, مسلمانوں پہ حملہ کرنا, یہ جذبہ تھا ان کے اندر, اور دوسرا تھا سزا دینے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں میں میں ان سے زیادہ بڑھ کر ہوں, تو اس لیے آپ مومنین کو ابھاریے, ہم جائیں گے تو کامیابی ہماری ہی ہوگی. اب آگے بہت ہی خوبصورت بات ہے جو ایک اصول بھی ہے اور ایک ہدایت بھی ہے اور اس موقع پر ایک اچھی دلیل بھی ہے. فرمایا من یشفع شفاعتن حسنا یکن له نصیب منہا, جس نے کسی کی شفاعت کی, شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا ساتھ دینا, بس میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ چل پڑے, تو یہ شفاعت ہوتی ہے, اصل میں ساتھ دینا ہی اس کا مطلب ہوتا ہے, اور اس کا مطلب جوڑا بن جانا بھی ہے, جوٹی دار بن جانا بھی ہے. تو مطلب یہ کہ میں اور آپ مل کر دو ہو گئے تو ہم ज़्यादा ताकतवर हो गए। इसी से शफ़ वल वितर, वितर ताक को कहते हैं और शफ़ जोड़े को कहते हैं। तो दो मिल जाते हैं तो फरमाया कि जिसने किसी मसले में, किसी अच्छे मसले में किसी का साथ दिया, नेकी में तावन किया, अच्छे कामों में तावन किया, अच्छे कामों में मिलकर काम कर रहे हैं, यकुन लहू नसीबन मुनहा, तो उस नेकी में उसका भी हिस्सा होगा। यानी नेकी मैं करने जा रहा था या आप करने जा रहे थे और मैं आपके साथ चल पड़ा, तो मुझे अपना हिस्सा मिल जाएगा, आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा। आगे फरमाया वमई यशवा शफाअतन सैया, और जिसने बुरे काम में साथ दिया, यकुन लहू किफ्ल मिनहा, तो उसके लिए उसमें से हिस्सा हो जाएगा। वकान अल्लाह अला कुल्ल शैइन मुकीता, और अल्लाह ताला तो हर हर चीज के ऊपर पूरी कुदरत रखने वाले निगरान हैं। मुकीत का मतलब अल्लाह के साथ जब आता है तो उसमें निगरानी का मफहूम और कुदरत का मफहूम और हकूक की पासदारी का मफहूम पैदा हो जाता है। मुकीत का असल मतलब है खुराक फराहम करने वाला, गजा फराहम करने वाला। तो अल्लाह ताला हर चीज़ का प्रोवाइडर है, निगरान है, तो अल्लाह की वजह से निगरान के मफहूम आ गए इसमें। तो प्रोवाइडर है तो उसने नेकी का अजर भी देना है, बुराई की सजा भी देनी है। अब ये बात आई क्यों है यहाँ पर? पहले असूल तो वाज़े है कि जिसने बुराई में साथ दिया वो उसको बुराई के में से हिस्सा मिल जाएगा, जिसने नेकी में साथ दिया उसको नेकी में से हिस्सा मिल जाएगा। ये असूल वाज़े है। इसी असूल पर हमारे यहाँ एक असूल फिका में चलता है जिसको कहते हैं कि तावुन अल इस्म, गुनाह में साथ देना, तावुन करना। तो हमारे यहाँ सूद की और बैंक की मुलाजमत में जब ये फतवा पूछा गया उलमा से तो उन्होंने यही कहा कि ये तावुन अल इस्म है, कि सूद के काम में तावुन है, इसलिए ये हराम है। वो यहीं से असूल निकला हुआ है इसी आयत से कि अगर कोई आदमी बुराई में साथ देगा तो वो उसके खाते में लिखी जाएगी। तो जो मिसाल के तौर पर मैं चोर हूँ, चोरी का प्रोग्राम बनाया मैंने और आपने मेरा साथ दिया, सिर्फ इतना कि बाहर निगरानी कर रहे हैं, कोई हाथों नहीं रहा, तो आप उस चोरी में हिस्सेदार हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है जिसको यहाँ बयान किया गया। तो चुनाचे वो चोर जो चोरी कर रहा था उसने जो कमाया वो भी हराम, और जो इसको उसने निगरानी करने के कुछ मुआवजा दिया वो भी हराम, क्योंकि वो चोरी से दोनों ने कमाया, दोनों ने चोरी में एक दूसरे का तावन किया। तो ये असूल वासे है, इसमें कोई शुबा नहीं। अब यहां क्यों बयान किया है? यहां इसलिए बयान किया है कि जिहाद में जो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इनको उभारें जिहाद पर, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपने मोमिनीन को बचाना है, वहां जाकर काफरों का मुंह तोड़ना है, तो मोमिनीन को इसके लिए उभारें। मोमिनीन किस असूल पर साथ देंगे? वो इस असूल पर साथ देंगे कि अगर जिहाद मैं करने जा रहा हूं, मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन मैंने जो तावन कर सकता हूं कर दूं। तो कोई पैसा दे रहा है, बूढ़ा आदमी है, जिहाद में नहीं जा सकता, उसने कहा जी मैं 200 तलवारें आपको देता हूं, मेरे पास 20 घोड़े हैं जी आप ले जाएं, मेरे पास 10 ऊंट हैं जी फौजियों के खाने के लिए काम आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जितना जितना साथ देते जा रहे हैं वो उतना उतना सवाब मिलता चला जाएगा। तो जिहाद पे उभारने के लिए ये असूल दिया गया है, जो भी काम नेकी का हो रहा हो उसमें हम अगर तावन कर दें तो बस वो हमें हिस्सा मिल जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इसमें शेड ऐड किया, जो आपकी जहानत और आपकी फतानत और कलाम के अंदर जो छुपी हुई बातें होती हैं उनको पकड़ने के लिए जो सलाहियत चाहिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मानी पकड़ते हैं आयत के तो हैरत हो जाती है कि ये कहाँ तक सोचते थे। आपने फरमाया कि वो आदमी भी सवाब मिलेगा जिसने नेकी की तरफ रहनुमाई की, वो शामिल हो गया ना उसमें, रहनुमाई करके वो शामिल हो गया। तो मैंने आपसे पूछा नमाज कैसे पढ़नी है, आपने कहा नमाज ऐसे पढ़ो, तो उस आपने क्या किया, मेरी नमाज पढ़ने के शौक में आपने मेरा साथ दिया, नेकी का सवाब मिलेगा। तो इतनी बारीक चीज़ निकाल कर आप ले आए हैं कि सिखाने वाला और तावुन करने वाला और समझाने वाला और रहनुमाई करने वाला वो भी इसी में आ जाएगा। तो अब ये जो असूल है, ये इसाले सवाब भी का जो असूल हमारे यहाँ गलत तरीके का बना लिया गया, असल इसाले सवाब ये है कि आपने जितना किसी काम में तावन कर दिया वो आपके हिस्से में लिखा जाएगा, खा आपने रहनुमाई करके कर दिया, खा साथ देकर कर दिया, खा आपने सिर्फ 2-4 रुपए देकर साथ दे दिया उसका, तो जितना जितना आपने हिस्सा डाला वो इसाले सवाब हो जाएगा। तो नमाज मैंने पढ़ी थी चूँकि आपने मुझे सिखाया तो सवाब आपको हो गया। तो जब तक मैं आपके सिखाए हुए तरीके पर नमाज पढ़ता रहूँगा आपको सवाब मिलता रहेगा, इससे बड़ा इसाले सवाब और क्या हो सकता है। और ये जारी और सारी है, यानी इसमें कभी इनकता नहीं आता सिवाय इसके कि मैं नमाज पढ़ना छोड़ दूँ, तब उस दिन आपको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन मैं नमाज पढ़ूंगा चूँकि आपने मुझे सिखाया था, रहनुमाई की थी, तो आपको सवाब मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी आयत है, बहुत सारे इसके अंदर से मानी और फ़ायदे निकलते हैं जिनको समझना, हमारी उम्मत ने बहुत सारी चीज़ें राइज हैं इस पहलू से, तो ये सदका जारिया इसी में है और इसाले सवाब इसी में है। हमारा जो इसाले सवाब हमने बनाया है कि मैंने नेकी की और कहा जी कि फलां को मिल जाए, वो नहीं मिलती, उसका कोई सबूत नहीं है कुरान और सुन्नत में। आप अपने अपने लिए भी नेकी ज़ाया कर दी, उसके लिए भी ज़ाया कर दी, क्योंकि आप अपने लिए नीयत आपकी अपने लिए नहीं थी, उसके लिए थी, उसको मिलनी कोई नहीं है क्योंकि उसने तो उसका कोई हिस्सा नहीं है उसमें, शामिल नहीं है वो। अब मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया कि किसी भी अमल को कबूल कर होने के लिए, अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लिए 3 शर्तें हैं, आपकी नीयत इन्नमा लामालो बिन्नियात, ठीक है, आपका तकवा, कुरान कहता है कि मुझे तुम्हारा गोश्त और बोटियाँ और खून नहीं पहुँचता, तुम्हारा तकवा पहुँचता है, ठीक है, और आपका अमल सही तरीके पर। ये 3 चीज़ें जब होंगी तो अमल कबूल होगा। मेरा अमल मेरे लिए, मेरा अमल मेरे लिए 3 शर्तों पर पूरा होता है, मेरी नीयत, मेरा तकवा, मेरा सही अमल जो मैंने सही तरीके से किया। अगर मसलन मैंने वजू के बगैर नमाज पढ़ ली, कबूल नहीं होगा क्योंकि नमाज का तरीका ख़राब कर दिया मैंने, मैंने तकवे के साथ नमाज नहीं पढ़ी, वाला साहब ने कहा था, मजबूरन खड़ा हो गया, नमाज कबूल नहीं होगी। मेरी नीयत थी कि कोई लोग मुझे नमाजी कहें, मुझे वोट देंगे, मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, ये 3 शर्तें मेरे अपने अमल के लिए होंगी तब मुझे सवाब मिलेगा। तो ये मेरे अमल में ये 3 चीज़ें दूसरे की तो होती नहीं है, ना उसकी नीयत होती है, ना उसका तकवा उसमें शामिल होता है, ना उसने अमल किया होता है। अमल के लिए कुरान का सही लफ्ज़ है सही, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ, इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, नियत, तकवा, सही। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हुई तो मेरे लिए भी 3 में से कोई एक कम हो जाए, कोई एक, तो मेरे लिए भी उसका अजर नहीं है, चाहे जाए कि दूसरे को जाए। तो दूसरों को तो तब मिलेगा जब वो इन्हीं 3ों तरह से इसमें शामिल हो, तभी मिलेगा। तो इसलिए इसाले सवाब जो है वो 3 शराइत पर मेरे मुझे भी सवाब उस वक्त पहुंचेगा जब मैं अपने अमल में ये 3 शर्तें पूरी करूंगा, तो दूसरे के लिए पहुंचाना तो और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि ना मिसाल के तौर तो पर मैं अपने दादा के लिए कुर्बानी करूं, मेरे दादा का ना इसमें नियत है जो मैं आज कुर्बानी कर रहा हूं, ना उनका तकवा इसमें शामिल है। ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन्हें अगरी के रहमत करे कि वो सारी ज़िंदगी मुकाबले के लिए कुर्बानियाँ किया करते थे, मुझे क्या बताऊँ, ठीक है, उनकी तकवा शामिल नहीं हुआ और उन्होंने अमल भी नहीं किया। तो ये वो 3 दीन के असूल, माने हुए असूल हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, सिर्फ इकट्ठे करके बयान कर रहा हूँ। इसाले सवाब के लिहाज से ये माने हुए असूल हैं, इन नमाला मालो बिनियाद, बच्चे बच्चा जानता है। कुरान कहता है तकवे की वजह से अमल कबूल होता है, कुरान कहता है कि सही जैसी करोगे वैसा मैं अजर दे दूंगा। तो ये 3 काम, इसके बगैर कोई अमल सवाब नहीं पाता करने वाले के लिए भी। तो जिसने नहीं किया, सिर्फ उसको पहुंचाना है, तो उसके लिए तो और भी चीज़ें चाहिए होंगी, अलबत्ता उसने साथ दिया हुआ है, उसने किसी भी पहलू रहनुमाई की है, ताबुन किया है, वजू करा दिया मुझे, तो मेरी नमाज के में वजू कराने का सवाब उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो असूल है। तो यहाँ जिहाद के लिए भी इसी असूल को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल कर दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी है, जो साथ जाएंगे वो रसूल का साथ देंगे, तो जैसा जैसा साथ देंगे वैसा वैसा उनको हिस्सा मिल जाएगा। और जहां पर देखिए दो लफ्जों का फर्क भी किया है, नसीब और किफल। किफल में जरा मानी तो हिस्से के ही हैं, लेकिन ये जरा इस तरह की बात होती है कि उसके जिम्मे भी कोई चीज पड़ जाएगी, तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस होती है। तो यूं समझिए कि तर्जमा यूं होना चाहिए कि जो नेकी में साथ देंगे उनको नेकी में से नसीब मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा, और जो बुराई का साथ देंगे उनके जिम्मे भी कुछ पड़ जाएगा, बुराई वो जो है, इस तरह का मफहूम हो जाएगा। तो इस असूल को याद रखना चाहिए, बड़ा अहम असूल है दीन का, और यहाँ जिहाद के लिहाज से। तो अब कोई अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलेंगे तो सहाबा को दोहरा अजर मिल रहा है, एक रसूल का साथ देने का, एक जिहाद में शामिल होने का। तो जिसने नेकी नेक काम में साथ दिया, जोड़ीदार बना, जोटीदार बना, उसके लिए उसका हिस्सा हो जाएगा नेकी का, और जो बुराई के लिए जोटीदार बना उसमें बुराई का उसके लिए जिम्मे आ जाएगी, उसके खाते में लिख दी जाएगी। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर मुकीत है। अब मुकीत को भी समझ लीजिए, थोड़ा मैंने पहले बयान कर दिया कि अब जिसने मिसाल के तौर पर अभी हम बात कर रहे थे कि आपने मुझे नमाज सिखाई, तो सिखाने में जो आपका हक बनता है वो देना चाहिए, तो मुकीत देगा। अगर अल्लाह ताला मुकीत ना हो तो नहीं देंगे, कोई मसला नहीं, इग्नोर कर दिया, भूल गए, नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाने कि जिस जिस की जो काम कर दिया है तो मेरे ऊपर उनकी हकूक की जिम्मेदारी है, मैं अब लाजमन पूरे करूँगा। तो अगर उसको कुरान में आखिर जाकर बयान किया कि जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो भी सामने आ जाएगी, जरा बराबर बुराई की होगी वो भी सामने आ जाएगी, तो आप हैरान रह जाएंगे क़यामत वाले दिन कि मैंने वो जो उस मौके पर सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली थी, मैं झूठ का क्यों साथ दूँ। तो मुकीत का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ज़िम्मेदार है हमारी तमाम नेकियों के सवाब देने के और हमारी तमाम बुराइयों की सजा देने में, वो ये करके रहेंगे। जितना जितना जिसका हक है उतना उतना उसके खाते में लिख दिया जाएगा और उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये ज़ाहिर है कि खुदा के उस बेलाग फैसले की तरफ जो क़यामत वाले दिन ज़ाहिर होना है उसकी वजाहत है। क़यामत का दिन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक दिन है, उसके उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी का लिहाज नहीं होना है, कोई अल्लाह का करीबी नहीं है, कोई दूर नहीं है, सारे के सारे अल्लाह की मखलूक है। जो मोहब्बत अल्लाह ताला को किसी जानवर से है वही आपके साथ है। तो इस मोहब्बत को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं। और ये याद रखिए कि जो सिर्फ नबियों को बहुत ऊंचा मकाम नहीं मिलना है। सूरा जो है मरियम और सूरा आले इमरान में हज़रत मरियम के लिए अल्लाह ताला ने कुछ अल्फाज बोले हैं, सद्दकत बे कलमात रब्बिक, उन्होंने अपने रब के कलमात को पूरा कर दिखाया, और आगे है उसके अहकाम को भी पूरा कर दिखाया, यानी अल्लाह ने जो शरीयत दी थी वो भी पूरी कर दी, जो अल्लाह ने उनसे कोई बातें कही वो भी पूरी कर दी। तो ये गालबन सूरह हदीद में। तो अब ये जो काम हज़रत सईदा मरियम जो है उनको अल्लाह ने ये भी कहा है कि सिद्दीका, मैंने पिछली दफ़ा भी उनका जिक्र किया था, सिद्दीकीन जब आयत आई थी, तो सिद्दीक होना एक गैर नबी खातून का नामसाद हालात हैं। वालदा ने एक नज़र मान दी है, नज़र मान के वो माबद में छोड़ गई हैं, सिनेगॉग कह लीजिए उसमें छोड़ गई हैं, हज़रत ज़करिया उनको मिल गए हैं और हज़रत ज़करिया उनसे परेशान हो रहे हैं कि ये क्या चीज़ है मेरे पास आ गई है। वो उनको देख के अपने लिए बेटे की दुआ करते हैं कि मुझे भी इस तरह की औलाद अता कर। तो अब ये जो कमाल है ये है, मैं आप भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें सिद्दीक बनना पड़ेगा कि अल्लाह की बातें पूरी करते चले जाएं, अल्लाह की बातें पूरी करते चले जाएं। यहाँ मसला यही ज़ेर बहस है कि मुनाफ़कत करके क्या करना है, मुनाफ़कत करके क्या मिल जाएगा, अल्लाह के पास पहुँचना है। और वो आगे अल्लाह ताला बयान भी कर रहे हैं इसी बात को, जो मज़मून जिस तरफ जाएगा तो वो खुद बखुद चलता चला जाएगा। तो बहरहाल मैं उस तक जब वहाँ आयत पहुँचेगी तो फिर अर्ज़ करूँगा। तो पहली बात ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का जिन लोगों को तंग कर रहे थे उनको निकालने के लिए वहां से, और दूसरा कुरैश का मुंह बंद करने के लिए जिहाद का हुक्म दिया गया। इस जिहाद में कुछ मुनाफिकीन ने कीलो काल की और कहा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो हर मौके पर जिहाद का हुक्म दे देते हैं, नुकसान हो जाता है तो हम इनका साथ नहीं देंगे। उसको अल्लाह ने बयान किया कि नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप निकलिए, इनको दफा करें मुनाफिकीन को। और फिर मोमिनीन को उभारने के लिए असूल बताया कि अब रसूल निकल रहा है, आ जाओ, जिसने कुछ कमाना है वह आ जाए। तो उनके लिए एक असूल दे दिया जो आपको सारी ज़िंदगी के लिए काम आएगा। आगे फरमाया वाइज़ा हुयिश तुम बेतहयतिन फहय्यू बेअहसने मिन्हा, अगर तुम्हें आदाब पेश किए जाएं, सलाम कहा जाए, तो उसका जवाब उससे बढ़कर बेहतर दो, और रुद्दुहा या वही कम से कम जवाब दे दो। इन अल्लाह काना अला कुल्ल शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर हिसाब रखने वाले हैं। अब फिर आपको जहन में आएगा कि ये अचानक सलाम दुआ कहां से आ गया। ये आयत बहुत ही खूबसूरत है, जिस मकाम पे आ गई है वो, अब मैं कजमज बयान आदमी हूं, अल्लाह ताला की कलाम की खूबियां बता नहीं सकता, लेकिन अब देखिए कि मुनाफिकीन की बातें सुनने के बाद मुसलमानों के दिल में एक दूरी पैदा हुई होगी, ठीक है, कहा कि नहीं, जब भी कोई तुम्हें सलाम कहे तो उसका बेहतर जवाब दो, ठीक है, या कम से कम वैसा ही जवाब दे दो। तो मोमिनीन की तरबियत हो गई। दूसरा पहलू देखिए कि अगर मैं मोमिन हूं और आपने मुझे सलाम कहा, आप भी मोमिन हैं, तो मैं आपको, आप अच्छा सलाम करेंगे, मैं आपको अच्छा जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपने सलाम कहा और मैं मुनाफिक हूं, अच्छा जवाब दूंगा। एक ऐसी पकड़ क्या पैदा कर दी अल्लाह ताला ने कि अब मुनाफिकून जो हैं वो परेशान होंगे कि अब करें क्या, अगर कोई मुसलमान सलाम कहता है तो क्या हम उसको अच्छा जवाब दें। और उसने सिर्फ इतना कहा अस्सलाम वालेकुम जी, आगे से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात कहेगा मुनाफिक। ये बिल्कुल वैसा ही हुक्म बन गया जैसे वो दुरूद वाला हुक्म है कि मोमिनीन जो हैं वो अल्लाह ताला और फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह पे अपने रसूल पे रहमत नाजिल कर रहे हैं, तो ऐ मोमिनीन तुम भी अपने रसूल के लिए रहमत तलब करो, ठीक है, मुनाफिकीन तो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक वही फ़ज़ा यहाँ पैदा कर दी है कि मदीना में मुनाफिकीन मौजूद हैं, कमज़ोर मुसलमान मौजूद हैं, कमज़ोर मुसलमान सलाम कर लेंगे लेकिन मुनाफिक नहीं करेगा। मुनाफिक नहीं करेगा तो अब आपका ढीला सा जवाब सुनकर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। फिर आगे चलकर एक और मसला जरे बहस आ गया है, ठीक है, 94 में जाकर एक और पहलू सलाम के हवाले से जरे बहस आना है, उसकी तमहीद भी इसके अंदर है। वो ये कि जब जंग करने जाएंगे मक्का में अपने कमज़ोर मुसलमानों के लिए या मैदान जंग में, तो वहाँ अब एक आदमी ने आपने सलाम कहा ये जानने के लिए कि ये हमारा साथी है कि नहीं, उसने आगे से जवाब दिया अपनी टीम में शामिल कर लें, लेकर आ जाए, ठीक है। दूसरी सूरत ये होगी कि उसने सलाम कह दिया, तब पता चल जाएगा कि हमारा साथी मुसलमानों में से है, उसने अच्छे तरीके से सलाम कहा, तब बचा कर ले आएंगे, ठीक है। ये भी एक फ़ज़ा बन गई। और तीसरा इसके अंदर जो फ़ज़ा बनेगी वो ये कि अगर कोई सलाम कर दे तो उसको काफ़र समझ के मारना नहीं है। अगर कोई सलाम कर दे और तुमने अच्छा जवाब देना, उसको मार नहीं देना उसको कि ये झूठ का सलाम कर रहा है या झूठा मूठा में सलाम कर दिया जान बचाने के लिए, नहीं, काफिरों पे जब हमला करो तो उनमें से अगर कोई सलाम कर दे तो ये आगे चलकर मजीद वाजह हो जाएगा आयत 94 में जाकर। लेकिन यहाँ उसकी एक तरह से तमहीद सी बन गई है, तो एक जुमला इतने पहलू रख रहा है। ये पहलू जो है ये ज़ाहिर है कि कलाम की इस पोजिशन की वजह से है जहाँ पर यह आयत रख दी गई है। तो फरमाया कि जब तुम्हें कोई आदाब पेश करे, सलाम करे, जो तहियत है वो असल में अत्तहियात में भी हम यही लफ्ज़ बोलते हैं, ये ग्रीटिंग्स के मौके की चीज़ होती है, किसी जगह जाएं तो सलाम दुआ, मुलाकात के मौके पर किसी को देखकर जी अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, शाम बखैर, ये जो जुमले होते हैं ये तहियत होता है। तो फरमाया कि जो कोई दूसरा कहे उसका अच्छा जवाब दो, उससे बेहतर जवाब दो। तो ये एक एक समझ लीजिए कि एक इसके अंदर तदबीर भी है, इसके अंदर प्लानिंग भी है, इसके अंदर दीन की तालीम भी है। हमारी उम्मत ने इससे फिर ये हुक्म निकाला है कि सलाम करना तो सुन्नत है लेकिन जवाब देना फ़र्ज़ है, इस आयत की वजह से। वो इसी आयत की वजह से है कि अल्लाह ने कहा कि जब कोई तुम्हें सलाम करे तो उस जैसा या वैस उससे बेहतर जवाब दो, तो उसको फ़र्ज़, क्योंकि कुरान में जब हुक्म आ जाता है तो हमारे फुका उसको फ़र्ज़ करार दे देते हैं। तो ये वो आयत है। आगे इन्नल्लाह काना आला कुल्ले शईन हसीबा। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि मैं मुनाफिक ने सलाम कहा है और मैं उसको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दे रहा हूँ, तो उन्होंने फरमाया कोई घबराने की बात नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखता है, तो उसको वो सलामती पहुँचेगी नहीं जो जिस मानी में तुम कह रहे हो, और क़यामत वाले दिन मामला कर देंगे तुम्हारा। तुमने सवाब हासिल करना है, उसको पूरा सलाम कह देना, ठीक है। इन अल्लाह अला कुल्ले शईन हसीबा। तो जो भी इस वजह से कोई मुनाफिकों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो तब भी अल्लाह हिसाब रखने वाला है, तुम्हें कोई नुकसान हो रहा है तो तब भी अल्लाह हिसाब रखने वाला है, घबराने की बात नहीं है, अल्लाह ताला पूरा हिसाब बराबर कर देंगे। जो तुम लोगों को नुकसान होगा अजर की सूरत में क़यामत वाले दिन मिल जाएगा, जो उनको फ़ायदा हासिल होगा इस अमल का मुनाफिकीन को, तो उनके दुनिया में अल्लाह ने जो अजर देना है उसका हिस्सा बन जाएगा। इन अल्लाह काना अला कुल्ले शईन हसीबा। तो आगे वो जो आयत है वो है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। पीछे कह रहा था कि आगे वो बात आ रही है कि इस सारे काम के पीछे के हिसाब किताब कहाँ होना है, और ये जो नेकी का साथ देने का अजर मिलना है वो कहाँ मिलना है, बुराई का साथ देने का सज़ा मिलनी है वो कहाँ मिलनी है, और वो क्यों मिलनी है, वो अगली आयत में फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। ये बहुत मानी खेज आयत है, लेकिन मतलब वही है कि हम कहाँ तक को समझें क्या करें। ला यजमानकुम इला यौमिल क़यामा, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है तो वो क़यामत के दिन तुम्हें इकट्ठा करेगा। ला रैबा फी, क़यामत के आने में कोई शुबा नहीं है। वमन अस्तकु मिन अल्लाह हदीसा, ज़रा बताओ कि अल्लाह से ज़्यादा सच बोलने वाला कौन है। तो एक एक जुमला बहुत अहम है। सिर्फ अल्लाह ही इलाह है तो क़यामत वाले दिन इकट्ठा करेंगे। तौहीद और क़यामत वाले दिन इकट्ठा करने का नतीजा क्या निकलेगा कि कोई और हाथ नहीं रोक सकेगा, किसी और का फैसला नहीं चलेगा, सिर्फ उसी का चलेगा। इलाह और क़यामत को इकट्ठा करने का क्या मतलब है कि इलाह हक रखता है, चाहे उठाकर फेंक दे, चाहे जजा दे, चाहे सजा दे, उसका हक है। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ पेंटर से और पेंटिंग से उसकी, कि एक पेंटर कोई पेंटिंग बनाता है तो वो सारे हक रखता है, चाहे तो अपनी दीवार पे लगा दे, चाहे बेच दे, चाहे सर्दियों में आग जलाकर ताप ले, हक रखता है। ठीक यही हक खुदा को हमारे ऊपर हासिल है, इलाह को हमारे ऊपर हासिल है। तो फरमाया कि मैं इलाह हूँ, इकट्ठा करूँगा, कौन रोक सकता है मुझे, मैं इलाह हूँ, अकेला मैं ही फैसले करूँगा, क्योंकि और कोई इलाह नहीं है, तो मेरा ही हक है तुम्हारे ऊपर, और किसी का हक नहीं है, और जब कोई इलाह नहीं है तो मेरा हाथ भी नहीं रोक सकेगा। तो ये वो सारी बातें इसके अंदर इकट्ठी कर दी हैं। कुरान मजीद का तरीका यही है कि वो दो बातें जोड़ देता है और हमारे ऊपर छोड़ देता है कि अब इसके अंदर से हिकमत निकालो। मैं इसकी मिसाल जंगल से दिया करता हूँ। अल्लाह ने पौधे, झाड़ियाँ, घास फूस, कीड़े मकोड़े, जानवर सब एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। अब हिकमत तलाश करो कि इकोसिस्टम क्या है, डिके का सिस्टम क्या है, पता नहीं क्या क्या कुछ, ऑक्सीजन का, सांस लेने का, इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं एक जंगल में कि आदमी हैरान रह जाता है। ठीक ऐसा ही यहाँ किया अल्लाह ताला ने। और देखिए कि पिछली आयतों से क्या जोड़ जोड़ा है कि देखो तुमने जो ये काम करने हैं और मैंने तुमने जो नेकी का साथ देना है, ये करना है, जिहाद के निकलना है, तो उसका मैंने क़यामत वाले दिन तुम्हारे साथ मामला करना है। क्या खूबसूरत मज़मून जोड़ा है। और फिर जो इस आयत में जो चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं वो भी देख लीजिए। تو ایک ہو تو میں نے واضح کر دیا کہ قیامت اور الہ کے کیا تعلق ہیں. پھر فرمایا لا ریب فی, اللہ تعالیٰ اکیلے الہ ہیں, لازماً قیامت والے دن تمہیں اکٹھا کریں گے اور قیامت کے آنے میں اکٹھا کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے, یعنی یہ حتمی فیصلہ ہے. کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا یا اللہ تعالیٰ کی رائے تبدیل ہو جائے. بادشاہ سلامت ہے نا, موڈ آیا تو کر لیا, نہیں موڈ آیا تو نہیں کیا. نہیں, فرمایا لا ریب فی, میں الہ ہوں اور یہ پکا فیصلہ میں نے کیا ہوا ہے. اور آگے فرمایا من نستقی من اللہ حدیثا, بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ کوئی ڈر ہوگا, کوئی خوف ہوگا, کسی کا لحاظ ہوگا, والد صاحب کیا کریں, اب بےزتی ہو جائے گی, نہیں کیا, جھوٹ بول دیا, سچ نہیں بولا, والد صاحب نے قبضہ کر رکھا ہے زمینوں پہ, ان کو نقصان ہو جائے گا, وہ مجھے آگ نہ کر دیں, مجھے مال نہ چھین لیں, یہ سارے خوف ہوتے ہیں. اللہ کو کیا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں. پھر اللہ جھوٹ بولے گا کیوں؟ کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, صادق ہے. تو اصدق من اللہ حدیثا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ قیامت ہونی ہے اور میں اکیلا الہ ہوں, تو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ میں بات کر رہا ہوں, مجھ سے سچی بات بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا؟ تو اتنی تاکید کر دی اس جملے میں, اور توحید اور قیامت کو اور ہمارے یہ ساری کرتوتیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں منافقین کی, ان سب کے بعد یہ زبردست مقام پہ رکھ کے بتا دیا. گویا تنبیہ ہو گئی, تذکیر ہو گئی کہ اکیلے خدا کی وجہ سے تمہیں انہی اصولوں کے تحت معاملہ کرنا پڑے گا جو اس الہ نے قائم کر رکھے ہیں. تمہارے اپنے اصول, تمہاری اپنی خواہشیں پوری نہیں ہونی ہیں. یہاں روک لیتے ہیں جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.